पार्टियां थी वो 8 पार्टी थी। एक पार्टी में 8 मृदंग बजता था और 32 करताल बजता था, उसमें सभी श्रीवास जी अलग, अद्वैताचार्य जी का अलग, सभी पार्टियां चलती थी। महाप्रभु का उद्देश्य है कि ये प्रभु का जो नाम है वो जन जन में सबके हृदय में इसको स्थापित किया जाए। तो आज बड़ा बढ़िया दिन है, आइए थोड़ा कीर्तन करते हैं महाप्रभु के लिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग महाप्रभु बाल लीला में एक भी कथा है कि महाप्रभु जब छोटी अवस्था में थे तो कभी कभी रोते थे, रुंदन करते थे। महाप्रभु के समक्ष अनगिनत खिलौने को रख देते थे, शांत कराने की चेष्टा करते थे। महाप्रभु शांत नहीं होते थे। कैसे होते थे? महाप्रभु के सामने कोई इस मंत्र का कीर्तन कर दे, जप कर दे, मृदंग करताल से गा दे, महाप्रभु मुस्कुरा देते थे। ताली बजाने की भी बहुत महिमा है, आप सब ताली भी बजाओ, गाओ भी साथ में। महाप्रभु मुस्कुरा देंगे, हंस देंगे आपके समक्ष। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए गाइए प्रभु का नाम गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माताओं की तरफ से आवाज कम आ रही है, बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम, बजाओ। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम, बजाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बजाओ प्रभु, आप बजाओ। हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन, जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन। हरि बोल आजुला, हरि बोल बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल वो हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। चैतन्य महाप्रभु की। सब लोगों ने ईमानदारी से बोला था। महाप्रभु को कितने लोग ठीक से जानते हैं? हाथ उठा, ठीक ठीक वाली बात कर रहा हूं मैं, सब जानते हैं है ना? तो महाप्रभु क्या कहते हैं बताओ? महाप्रभु का जो अवतार है, महाप्रभु जो आज के दिन पधारे हैं, महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है महाप्रभु। जैसे कृष्ण बलराम जी हैं, वैसे स्वयं कृष्ण है महाप्रभु। का जो ये भाव है, महाप्रभु जो आज इस जगत में आए हैं, इसको राधा जी के भाव को लेकर के आए हैं। जब कृष्ण के रूप में थे तो सभी भक्त भगवान के लिए रोते थे, अश्रुपात होता था, रोते थे सभी, आंखें भींगी रहती थी। और राधा जी का तो स्थिति अच्छी नहीं होती थी, हमेशा भाव में, वैराग्य में, प्रेम में डूबी रहती थी। भगवान ने सोचा कि भाई हम में कौन सी ऐसी आकर्षण है, कौन सी ऐसी खूबी है जिससे राधा रानी ये पागल हो जाती है। क्योंकि भगवान भी नहीं समझ पाते हैं कि मैं बड़ा हूं कि मेरा नाम बड़ा है। राम न सके ही नाम गुण गाई, राम जी से पूछा गया, बोले कि मुझे पता नहीं है नाम कितनी महिमा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि राधा जी की स्थिति अच्छी नहीं रहती है, निरंतर नाम जप करती रहती हैं, निरंतर नाम लेती रहती हैं। कौन सा ऐसा मेरे में आकर्षण है, खूबी है, कौन सी ऐसी तत्व है जिसके चलते राधा जी की स्थिति अच्छा नहीं रहता है 24 घंटे। जब बात समझ में नहीं आई तो राधा के भाव को लेकर के आज के दिन चैतन्य महाप्रभु यहां प्रकट हुए हैं। गौरांग, हाँ थोड़ा जगते रहिए आप लोग। चैतन्य महाप्रभु आज के दिन कहाँ प्रकट हुए हैं? मायापुर में। मायापुर में गए हैं जन्म स्थान में आप लोग चैतन्य महाप्रभु के?
हाँ जी,
जो पिता धर्मात्मा प्रभु बोल रहे हैं। भक्त लोग बहुत नजदीक जाकर के महाप्रभु को समझना चाहते हैं। महाप्रभु का जो लीला है, महाप्रभु तो भगवान घोषणा नहीं किया, लेकिन महाप्रभु का जो क्रियाकलाप था वो भगवान ही के जैसा था। और भगवान ने अपने को छुपा करके भक्त के रूप में राधा जी को भाव को लेकर के प्रभु प्रकट हुए हैं। भगवान के लीला तो समझना बहुत कठिन नहीं है, समझ सकता आदमी, लेकिन आप सब जो भक्त बैठे हैं ना, आपको समझना बड़ा कठिन है। क्योंकि आपको देख करके नहीं बताया जा सकता है कि आपकी भक्ति की प्रकाष्ठा, आपकी भक्ति की ऊंचाई कितनी है, केवल देख करके नहीं बताया जा सकता है। तो महाप्रभु प्रकट हुए हैं। महाप्रभु का नामकरण हुआ था, बाल्यकाल की कथा है। महाप्रभु का नाम है एक निमाई पंडित। निमाई इसलिए कहते हैं कि एक वृक्ष के नीचे महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, इसे निमाई कहते हैं। पंडित इसलिए कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान लोग महाप्रभु के पास आए, सबको हरा करके भेज दिया। आप सब कथा जानते हैं, एक कश्मीर के केशव कश्मीरी पंडित, बड़ा प्रखंड विद्वान, सरस्वती जी की कृपा थी। आप किसी भी शब्द पर बोलने को कह दीजिए, वो बड़ा उनका अधिकार से बोलते थे, वो इतने बड़े प्रखंड विद्वान थे। वो उनको पता चला कि नदिया में एक छोटा सा बालक है, छोटा सा है, वो बड़ा विद्वान है, उसकी आवाज बड़ी प्रखर है, बड़ा तेज बोलता है। सुन रहे आप लोग माता जी लोग? देखो हमें दिखता कम है, ध्यान से सुनना, महाप्रभु आशीर्वाद देंगे आप सबको। तो केशव कश्मीरी जी दिग्विजय करते हुए पूरे संसार में बड़े बड़े आचार्य बड़े बड़े महात्माओं को हरा करके उनको पता चला कि नवद्वीप में एक नदिया में छोटा सा बालक है, वो बड़ा तेज है, वो शास्त्र का ज्ञान है उसके पास। अब जो शास्त्र जानता है और जो सुन ले के वो भी जानता है, तो शास्त्र को जानने वाले व्यक्ति से शस्त्रार्थ करने में थोड़ा आनंद आता है। तो महाप्रभु छोटी अवस्था में टहल रहे थे गंगा जी के तट पर, वहीं मुलाकात हो गई, संक्षिप्त में बताता हूँ, वहीं मुलाकात हुई महाप्रभु से। महाप्रभु ने देखा उनको, दर्शन किया, उन्होंने भी दर्शन किया। तो महाप्रभु से उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूँ और कुछ शास्त्र पर विचार करने आया हूँ। महाप्रभु ने कहा कि देखो, मैं तो उतना शास्त्र जानता नहीं हूँ, क्योंकि महाप्रभु तो 8 श्लोक वाली एक छोटा सा ग्रंथ बनाया, चेतो दर्पण वाली। बाकी फिर भी यदि आप की इच्छा है तो आप कुछ बताएं। तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि आप बताएं कौन सा विषय लिया जाए। महाप्रभु ने कहा कि दूर क्यों जाएं, हम गंगा जी के तट पर टहल रहे थे, गंगा जी के ऊपर ही कुछ विस्तार से बोल देते हैं। केशव कश्मीरी इतने प्रखंड विद्वान, बोलने में इतना प्रखर कि महाप्रभु को देखते देखते चलते चलते 100 श्लोकों में, चैतन्य चैतन्य कृष्ण कविराज जी लिखते हैं, 100 श्लोकों में बड़ी सुंदर गंगा जी का वर्णन किया। गंगा जी का वर्णन किया तो महाप्रभु से पूछा, ऐसे पूछ दिया कि इसमें कोई गलती है, धारा प्रवाह बोल रहे थे वो। महाप्रभु छोटी अवस्था है, धारा प्रवाह बोल रहे थे। महाप्रभु ने कहा कि 64 नंबर जो श्लोक बोला आपने, उसका हलंत विसर्ग दोनों गलत है उसमें। केशव कश्मीरी के शरीर में तो खूनों किलो तो खून नहीं, पानी पानी हो गए। बोले कि छोटा सा बालक, ये छोटा सा श्लोक संख्या बोल रहा है, ये कौन है ये? और वहीं से मुड़े और जाकर के अपने आत्महत्या करने के लिए तैयारी कर लिया। सरस्वती जी उन पर विद्यमान रहती थी निरंतर। हम कहते हैं देवीम सरस्वतीम व्यासम, सरस्वती जी बोलने की शक्ति देती हैं। यदि आप प्रभु के विषय में बोलना चाहते हो तो प्रचुर मात्रा में आपको ज्ञान देती हैं, जितना बोलना है बोलो, लेकिन भगवान के विषय में अनर्गल बोलोगे तो हम सब छीन देंगे तुमसे। जब आप आत्महत्या करने की तैयारी कर रहे थे, अभी तैयारी हो गए थे बिल्कुल, सरस्वती जी प्रकट हो गई। सरस्वती जी ने वरदान दिया था कि तुमको संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता है, उनका आशीर्वाद था ये, पराजित नहीं कर सकता है। जब आत्महत्या करने की पूरी तैयारी कर लिया तो सरस्वती जी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि आप किसी से नहीं पराजित होगे, कोई नहीं हरा सकता है। आज छोटा सा बालक नदिया नवद्वीप पर, एक बालक पंडित जैसा बात करता है, उसने मुझे पराजित कर दिया। तो सरस्वती जी ने कहा कि मैंने ये कहा था कि संसार में आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है, मैं ये थोड़ी कहा था, आपको आशीर्वाद दिया था कि भगवान भी आपको पराजित नहीं करेंगे। आप जो पराजित हुए हैं वो भगवान से हुए हैं, आपके कारण स्वयं भगवान चैतन्य के रूप में आकर के आपको पराजित किए हैं, वो ये भगवान के बाल लीला में है। चैतन्य महाप्रभु, आप समझो, 3 तत्वों का बड़ा सुंदर आविष्कार किया। राय रमानंद जी से जब बातचीत होती है चैतन्य महाप्रभु का, सनातन गोस्वामी से जब बात होती है, तो महाप्रभु ने जीवों के लिए 3 तत्व बताया। उसमें पहला ये है कि अविधेय तत्व, जीव का ध्येय क्या होना चाहिए। दूसरा है संबंध तत्व, जीव का संबंध किससे होना चाहिए, अविधेय संबंध। और तीसरा है प्रयोजन तत्व, हमारा शरीर धारण करने का प्रयोजन क्या होना चाहिए। ये महाप्रभु इसको बताते हैं और इसका बड़ा सुंदर व्याख्या किया है कृष्णदास कविराज जी। भगवान अभी बिल्कुल छोटे हैं, मुझे हमारे भाग में मिला है बाल लीला करने के लिए। धर्मात्मा प्रभु ने अनाउंस भी किया बाल लीला को बोलना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला है ना, जैसे राम जी के बाल लीला है, वैसी चैतन्य महाप्रभु का भी बाल लीला है। बहुत बहुत सुंदर बाल लीला है महाप्रभु का। थोड़ा सा हम लोग पढ़ लें, इसमें पढ़ लेते हैं ना। मैं 3-4 बार पढ़ के आया कि प्रभु जी ने भेजा तो इस बात को कहते हैं। अध्याय 14 है, श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं, जो छोटी अवस्था की बाल लीला थी। इसमें कहते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इस अध्याय का सारांश अपने ग्रंथ अमृत प्रवाह भाष्य में इस प्रकार दिया है। चैतन्य चरितामृत के इस 14वें अध्याय में इस दृश्य का वर्णन है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह घुटने के बल सरकने, रोने, मिट्टी खाने, अपनी माता को बुद्धि देने, ब्राह्मण अतिथि पर कृपा करने, दो चोरों के कंधों पर चढ़कर उन्हें भ्रमित करके अपने ही घर पहुंचने और बीमारी का बहाना करने का, एवं एकादशी के दिन हिरण्य तथा जगदीश के घर प्रसाद ग्रहण करने की बाल लीला का आनंद उठाया, सब इसमें दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी जो कृष्ण के अवतार हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, कुछ तो भगवान के अलग अलग अवतार है ना। जैसे भगवान का अवतार है युगा अवतार है भगवान का, गुणा अवतार है भगवान का, इसके बाद भगवान का नीचे जो विभूति अवतार हैं, बहुत अवतार हैं, लेकिन उन अवतारों में से चैतन्य महाप्रभु नहीं है, ये स्वयं कृष्ण है और भक्त के रूप में आए हैं और राधा जी के भाव को लेकर के आए हैं। आप देखते हैं ना, पढ़ते हैं, सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु एक बार ठीक से कृष्ण नहीं कह पाते हैं। क्या हो जाता है? कृष्ण का स्मरण होते ही चैतन्य महाप्रभु को मूर्छा आने लगता है, वाणी साथ छोड़ देता है, गला दुखने लगता है, रोमांचित हो जाता है शरीर, महाप्रभु ठीक से बोल नहीं पाते हैं। क्योंकि महाप्रभु के रूप में महाप्रभु का शरीर तो है, लेकिन भाव किसका है? राधा जी का भाव है, वहां पर राधा जी को लेकर प्रकट हुए हैं। राधा के भाव में निरंतर आप थोड़ा सोचो, समझो, चिंतन करो कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट थे और सभी गोपियों के साथ राधा रानी, जब भगवान के साथ उनका उत्कट, राधा रानी कौन है भैया? राधा रानी का स्थान क्या है भगवान के साथ? 3 शक्ति है भगवान की, कौन कौन सी शक्ति है? बहिरंगा शक्ति है एक, एक तटस्था शक्ति है और एक अतरंगा शक्ति है। अतरंगा शक्ति में श्रीमती राधा रानी आती हैं, बहिरंगा में आ जानती हैं दुर्गा देवी हैं, सब पर हावी हैं। इस समय किसी को नींद आ रहा है, कोई मुंह खोल रहा है, कोई सोचता है कब खत्म हो कि हम कुछ पाए ध्यान से आज करना है। ये बड़ा मंदिर का सौभाग्य, मंदिर का बहुत बड़ी कृपा है संतों पर, यहाँ के जो वैष्णव लोग हैं, बाहर से भी जो लोग आते हैं, बड़ी कृपा है कि इनको अपने साधना के अंतर्गत नियम में बांध करके रखते हैं। यहाँ के अधिकारियों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमेशा, इतना सुंदर नियम प्रभुपाद जी ने बनाया, लेकिन इन लोगों ने उस पर चढ़ करके दिखाया सब, बढ़ता जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव को लेकर के प्रकट हुए हैं। पहला कहते हैं इसमें, भक्ति विनोद जी कहते हैं इसमें कि भगवान एक बार छोटी अवस्था में थे, माता सची देवी ने, उनके पिताजी का क्या नाम है भगवान के पिताजी का? जगन्नाथ मिश्रा, सभी विद्वान है यहाँ पर। जगन्नाथ मिश्रा जी और सची माता जी, उनके माता पिता हुए। अब थोड़ा दृष्टि डालना कि चैतन्य महाप्रभु के जो पिता माता हैं वो कोई साधारण तो होंगे नहीं ना। जीवन में कितनी तपस्या रही होगी, जीवन में कितना वैराग्य त्याग रहा होगा जो भगवान के माता पिता बने। आप भी बन सकते हो, वह भाव लाओ जीवन में, वह भक्ति करो, भक्ति उपलब्ध है, हम लोगों को केवल करना है इसे। एक बार नदिया नवदीप में, मायापुर में दो चोर घूम रहे थे गांव में, उनको चोरी करना था, कुछ चाहिए था पैसा धन। माता सची ने भी चैतन्य महाप्रभु को स्नान करा करके ठीक से आभूषण से सजा करके और कहा कि जा खेल के आओ। महाप्रभु थोड़ा घर से बाहर निकल गए, बाहर निकल गए तो दो चोरों की दृष्टि पड़ी, भगवान पर तो पड़ी होगी लेकिन भगवान के अंग के ऊपर जो भूषण था, गहना था, उस पर बड़ा पड़ा। ये जो चीज है ना, भूषण, धन संपत्ति और स्त्री, महाप्रभु एक जगह कहते हैं काला कृष्ण जब दक्षिण भारत में पुजारियों ने जब उनका मन को हरण कर लिया तो महाप्रभु ने काला कृष्ण को पकड़ करके लाए, यहाँ क्यों फंस रहे हो तुम, चलो हमारे साथ। महाप्रभु के साथ रहने वाला व्यक्ति, आप समझो माया कितना प्रबल है, महाप्रभु के साथ रहने वाला व्यक्ति क्या किया? महाप्रभु ने कहा स्त्री धन दिखाइया तार लोभ जन्माइनो, स्त्री को धन को दिखा करके उस सीधे साधे काला कृष्ण के मन में लोभ दिखा कर, सन्यासी के साथ क्यों नाचते हो, एक बार कुछ भी नहीं, फकीर है, खाने को भी नहीं मिलता यहाँ तुमको, टाइम से यहाँ रहो, हम घर भी देंगे, धन भी देंगे और साथ में पत्नी भी देंगे। वो बेचारा का मन खराब हो गया, छुप गया। महाप्रभु जब दूसरे दिन जाने लगे सुबह में तो कहा कि भाई काला कृष्ण कहाँ है? काला कृष्ण महाप्रभु का असिस्टेंट था, नौकर था, कहाँ गए ये? ढूंढा गया तो महाप्रभु से बताया कि यह तो है नहीं यहाँ पर। महाप्रभु ढूंढते ढूंढते देखा कि मंदिर के पीछे छुपे हुए हैं। धन ये काम करता है, भगवान को भी छुड़ा सकता है, इसलिए महाप्रभु वैराग्य की बात करते हैं बार बार, विरक्ति की बात करते हैं। महाप्रभु ने पकड़ करके लाया और भक्तों से कहा कि सावधान, निरंतर हमें सावधानी की आवश्यकता है। महाप्रभु के अंग पर भूषण था, गहना था, दोनों चोरों के मन में महाप्रभु के गहने के ऊपर आकर्षित हो गया, मन खींच गया, लेकिन उपाय था नहीं निकालने का ना, तो सोचे क्या करें। तो उन लोगों ने कहा कि इस बालक को ही उठा लो साथ में, इसी को ले चलो साथ में, चलो कुछ भी हो भगवान को उठा रहे हैं वो लोग, ठीक। एक बार ना शिवरात्रि का दिन था तो अब सभी लोग जगे रहते हैं ना शिवरात्रि में, जल फल चढ़ाते हैं भगवान शिव पर। तो एक चोर भी जल चढ़ाने आया कि भाई जीवन भर चोरी किया हूँ, आज चलो मैं भी जल चढ़ाता हूँ, भगवान शिव को देता हूँ। वो चढ़ाते चढ़ाते जल फल चढ़ा दिया, घंटी बजाते हैं शंकर जी के ऊपर घंटा रहता है, जब घंटा देखा तो उस घंटा सोने का था और चोर का मन बिगड़ा, बोला कि इतना बड़ा घंटा, जीवन भर गरीबी हमारी समाप्त हो जानी है यदि हाथ में आ गया तो। अब लोग जाते हैं आते हैं जाते हैं आते हैं, रात्रि हो गई वहीं बैठा रहा घंटा के चक्कर में। जब बिल्कुल निर्जन हो गया, कोई नहीं रहा, तो उसने क्या किया कि शंकर जी के मंदिर में गया, पुजारी भी बेचारा सो गया थक थक करके, पुजारी भी थक जाते हैं ना बहुत, आज देखो कृष्ण बलराम मंदिर में कितना पुजारियों ने मेहनत किया है, परिश्रम किया है। अब भगवान को तो देखो ही, लेकिन उन पुजारी भक्तों को भी देखो कितना परिश्रम, कितना कॉन्शस उन लोगों ने अपना उसमें लगाया होगा। ये ज्यादा पूजनीय है सब पुजारी। तो अब घंटा भगवान शिव के ऊपर टंगा हुआ है, सोचा कि कैसे मैं इसको उतारूं। बहुत कोशिश किया, हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो उसने क्या किया कि भगवान शिव के मूर्ति पर चढ़ गया और घंटा उतारने लगा। और उसको चढ़ने की देर नहीं हुई और घंटे उतारते उतारते भगवान शिव प्रकट हो गए उसमें से। बोले बेटा वरदान मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको, वरदान मांगो, क्या चाहिए। वो डर गया, चोर, बोला कि मैं तो चोरी करने आया था, तो वरदान की बात हो रही है। बोले भगवान शिव से पूछा कि प्रभु ऐसे कह रहे हैं। बोले कि हाँ, लोग तो जल चढ़ा दे, फल चढ़ा दे, धतूर चढ़ा दे, भांग चढ़ा दे, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, बेटा तूने तो अपने आप को चढ़ा दिया मेरे ऊपर। वो दोनों चोरों ने महाप्रभु को कंधे पर बैठा लिया, महाप्रभु कंधे पर बैठा करके अब एकांत जगह ढूंढ रहे थे, कहाँ एकांत मिले कि इसका गहना उतारे हम वहां से। अब बार बार गलियों में घूम रहे हैं, रोडों पर घूम रहे हैं, मार्ग ही नहीं मिल रहा है। अंत में महाप्रभु ने इतना उनके मन को भ्रमित कर दिया, उस अवस्था में भी महाप्रभु ने जो भ्रमित कर दिया, तो उन चोरों ने महाप्रभु के घर के आगे ही छोड़ करके भाग गए वहां से। ये महाप्रभु के बाल लीला है, अद्भुत बाल लीला। एक बार सखियां थी, बहुत सखियां तो नहीं थी, छोटे छोटे बालिका थी, वो गंडकी यानी गंगा जी के पूजन करने गई थी वहां। गंगा जी के तट पर चैतन्य महाप्रभु भी वहीं टहल रहे थे। गंगा जी के पूजन करने गई थी तो महाप्रभु ने भी अपने सोचा कि चले देखें क्या कौन सा पूजा कर रहे हैं। महाप्रभु को तो उद्देश्य था ना कि सबको भक्त बनाना है, कृष्ण की तरफ मोड़ना है, जैसे आप सबका संतों का लक्ष्य है, भगवान में उनको जोड़ना है भगवान से। भगवान जाकर के बीच में बैठ गए उन युवतियों के, युवतियां तो नहीं थी, बहुत कुमारी अवस्था में थी। महाप्रभु ने कहा कि, महाप्रभु जब गए तो थोड़ा सा वो लोग अपने को ठीक नहीं समझा, अनकंफर्टेबल हो गए वो लोग, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहे, थोड़ा मन चंचल हो गया। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम लोग हमसे क्यों ऐसे कर रही हो, यदि तुम लोग मेरी बात सुनोगी ना, मेरी बात सुनोगी तो तुमको अच्छा पति मिलेगा, पूजा करने आई हो ना तुम लोग, तुमको अच्छा पति की प्राप्ति होगी। कब, जब तुम मेरी बात सुनोगी। तो फिर भी वो छोटी छोटी बालिकाएं उतना नहीं सुन रही थी, सुंदर पति मिलेगा, धन मिलेगा, घर भर मिलेगा, अच्छा सब चीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महाप्रभु छोटे अवस्था में बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सुन नहीं रही थी तो महाप्रभु को थोड़ा सा न सुनने से मन में थोड़ा बात आई। महाप्रभु ने कहा कि यदि आप लोग मेरी बात नहीं सुनोगे ना ध्यान से, तो मैं तुमको श्राप देता हूं, तुमको बूढ़ा पति मिलेगा। कौन मिलेगा? बूढ़ा पति मिल जाएगा, और घर घर में चार चार ननद होंगी, एक ननद से इतनी परेशानी हो जाता है भाभियों को, है ना। भागवत में लिखा है ननद, जो आनंद न दे, जो सुख ना दे, उसको ननद कहते हैं, ठीक। महाप्रभु ने कहा कि तुमको चार चार ननद मिल जाएंगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, बूढ़ा पति मिलेगा। इस तरह से महाप्रभु ने अपनी बाल लीला के द्वारा लोगों को आकर्षित करते थे, खींचते थे महाप्रभु को, महाप्रभु भगवान के तरफ जोड़ते थे महाप्रभु। महाप्रभु का एक ही काम था, महाप्रभु का जो अवतार है वो महाप्रभु केवल हरि नाम का प्रचार करने आए, चाहे अवस्था भगवान की छोटी हो या बड़ी हो। भगवान का जब अवतार होता है, अवस्था चाहे वो सची माता के गोद में हो, चाहे केशव कश्मीरी से बात कर रहे हों, चाहे दक्षिण भारत की यात्रा में हो या अपने पानी के छिड़काव से सबको प्रेम प्रदान कर दिए हो, चाहे बिल्कुल जन्म अवस्था में हो, उस अवस्था में भी भगवान अपनी भगवता को कभी भूलते नहीं है। ये भगवान की कला है, भगवान अपने स्वरूप कभी नहीं भूलते हैं। हम सब जीव हैं जो भगवान को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। अभी हम किसी से बात करें कि आप कौन हैं प्रभु, तो अपना नाम बताएंगे, फिर पूछेंगे आप कहाँ से आए हो, तो अमुक स्थान से आए हैं। ये सब शरीर का परिचय है। महाप्रभु ये सब परिचय नहीं जानना चाहते थे। महाप्रभु का परिचय ये था, महाप्रभु का संदेश ये है कि यदि आप संतों के बीच में कोई पूछताछ होती है कि संत भी ढंग से पूछता है, आपके शरीर का जन्म कहाँ है, ये नहीं पूछता कहाँ से आए हो। संत कहता है आपका शरीर का जन्म कहाँ है, शरीर का स्थान का। इसका मतलब ये हुआ कि महाप्रभु ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब शरीर नहीं है। शरीर में बैठा हुआ परमात्मा, हम वो जीव हैं, हम वो अंश हैं जो परमात्मा का अंश है, जो परमात्मा को निरंतर याद करने के लिए शरीर मिला है। महाप्रभु का ये संदेश है। मैं और थोड़ा पढ़ लेता हूँ। मिट्टी मिट्टी खाने, अपनी माता को बुद्धि देने और ब्राह्मण अतिथि पर कृपा करने, एक बार महाप्रभु के जगन्नाथ मिश्र जी के घर में संत लोग आया करते थे। जैसे किसी वैष्णव का घर हो तो संतों का आवागमन होना चाहिए, वहाँ धर्म का बोलबाला होना चाहिए, वहाँ तभी संतत्व हमारा सिद्ध हो सकता है। जिसके आंगन में, जिसके घर में संत का आवागमन नहीं है, एक बात आपको और बता दूं, बिना संत के कृपा के बिना भगवंत यानी भगवान कभी भी नहीं मिलेंगे। संतों की कृपा होना बहुत जरूरी है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जा पर कृपा करे सब कोई, यानी जिस पर संत की कृपा हो जाए तो भगवान तो करते ही हैं, सब उस पर कृपा की वर्षा करने लगते हैं। यदि आप गृहस्थ आश्रम में हैं और गृहस्थ आश्रम आपकी ठीक से चल रही है तो आप संतों के पास जाया करो। यदि संत कोई नहीं आता है, पहले तो संतों को बुलाओ हफ्ते में एक बार अपने गृहस्थ आश्रम में। यदि संत के पास समय नहीं है तो आप संतों के पास आ जाओ, दो चार दिन संतों को रख करके उनकी सेवा कीजिए, सुश्रूषा कीजिए और उनसे भगवान की मधुर मधुर बात को सुनिए, जिससे आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़े। ये कला है। जगन्नाथ मिश्र जी के घर में संतों का आवागमन था बहुत। वो गृहस्थ हैं, वो शिक्षा देते हैं कि सभी गृहस्थों कैसे होना चाहिए। अरे जिनके घर में परमात्मा आया है, स्वयं भगवान आया है, वो कोई साधारण गृहस्थ थोड़ी है। दशरथ जी और कौशल्या जी कोई साधारण गृहस्थ थोड़ी है। देवकी वसुदेव नंद बाबा यशोदा, कोई हम में आप में से कोई थोड़ी गृहस्थ बना है वैसा। ये सब भगवान के पार्षद है, वहीं से आए हैं, पूरे वैश्य के साथ प्रभु आए वहां पर। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी सांगो पांगस पार्षद, अपने पार्षदों के साथ महाप्रभु ने आया। क्या किया आकर के महाप्रभु ने, यज्ञ ही। महाप्रभु ने कहा कि सब यज्ञ बंद कर दो। कौन कौन सा यज्ञ भैया, तप यज्ञ बंद कर दो, तपस्या का युग नहीं है। तप यज्ञ, ध्यान यज्ञ भी बंद कर दो, योग यज्ञ भी बंद कर दो, दान योग भी बंद कर दो। क्या करो, बोले हरिनाम यज्ञ करो। यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। महाप्रभु ने कहा जिनकी बहुत सुंदर बुद्धि होगी सुमेधा होंगे, जिनकी बुद्धि बहुत प्रखर होगी कृष्णमती होगी, वो केवल एकमात्र प्रभु के नाम जप करेंगे। ये महाप्रभु का संदेश है। जगन्नाथ मिश्र जी के घर में संतों की बात छोड़ दीजिए, देवताओं का भी आवागमन था। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे इसमें, देवता लोग भी आते थे दर्शन करने के लिए महाप्रभु का। जैसे कृष्ण रूप में जब भगवान गर्भ में थे तो उन लोगों ने गर्भ स्तुति किया देवताओं ने आकाश से, उसी प्रकार महाप्रभु के समक्ष सब देवता लोग भी घूमते थे नवद्वीप में मायापुर में। तो चैतन्य महाप्रभु वहां रहते थे, भगवान के दर्शन करने की इच्छा होती थी। तो जगन्नाथ मिश्र के घर में संत महात्मा दर्शन की इच्छा से आते थे। एक बार एक दिन की बात है कि एक ब्राह्मण संत उनके घर में आए। उनके घर में आए तो अब संत आते हैं तो पहले पूछना चाहिए, पहले आसन दीजिए। गृहस्थ के घर में संत आता है, कोई वैष्णव आता है, गुरु जी आते हैं तो पहले आसन दीजिए। आसन देकर के, आसन कैसा होना चाहिए? सुखद आसन होना चाहिए, जिस पर बैठने में सुख मिले, आनंद मिले, ऐसा आसन दीजिए। फिर दूसरा, मीठे शब्दों से उनको बोलिए, मीठा शब्द, हो सकता है कभी कभी कड़वाहट भी हो तो मीठा बना के बोलो उसको। मीठा नहीं बोल सकते हो तो मिठाई क्या के बोलो, बोलो मीठा, जरूर मीठा बोलना चाहिए। इसके बाद और कुछ घर में ना हो तो जल लेकर के अर्पित कीजिए उनको, जल पीजिए पहले। बाद में आसन बासन बसन विहीना, इस कलयुग में यदि किसी के घर में मेहमान चले जाएं, वो भी बिना पूछे चले जाएं, तो अंदर से इतनी गालियां देते हैं लोग, कैसे आ गया ये, फोन भी नहीं किया मेरे पास, क्या करूंगा, मैं घर में कोई है नहीं। अतिथि उसे कहते हैं, आ माने नहीं, तिथि माने डेट, बिना समय दिए जो आपके घर में आ जाता है आश्रम में, वही अतिथि है। और वैसे अतिथि की सेवा देवो भव, देवताओं के समान होना चाहिए ऐसे अतिथि की सेवा, तब आप गृहस्थ बनने के अधिकारी हैं। गृहस्थ बहुत है, गृहस्थ आश्रम जो है वो बहुत कड़ा नियम साधन वाला है, उससे अच्छा है ब्रह्मचारी वाला, कोई नियम साधन नहीं है, जप करो भगवान के पास जाओ। गृहस्थों की बड़ी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी यह भी है कि आश्रम में किसी प्रकार का कमी न रह जाए। आज आश्रम में जाके पूछो कि यहाँ भोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोई पैसे की कमी नहीं है, है तो नहीं, ये सब गृहस्थ लोग पूछेंगे इस बात को, गृहस्थ लोग पूछते हैं। रंगनाथ जी के एक भक्त थे, और रंगनाथ जी के भक्त वो प्रतिदिन, उनके एक भक्त थे रंगनाथ जी को दर्शन करते थे और दर्शन करके गुरु जी के पास जाते थे, धनवान भक्त थे, बहुत धन था उनके पास, पूछते थे जाके मंदिर में गुरु जी से, पूछते थे कि क्या किस वस्तु की आवश्यकता है, और बड़े विनम्रता पूर्वक। हम लोग तो 2-4 हजार देते हैं तो यहाँ अहंकार आके बढ़ जाता है, हमने दान दिया, अरे भाई धर्मात्मा जी हमने दान दिया, आपने देखो ठीक से लगाना, ऐसे बोल देते हैं हम लोग। मंदिर में जब पंखा दान देंगे तो सभी पखड़ियों पर नाम लिखवा देंगे अपना, वो दान थोड़ी हो तो प्रचार कर रहा हो तो अपना। तो जाके बड़े विनम्र भाव से पूछा कि गुरु जी कोई जरूरत हो तो बताइए, धन बहुत है आप ले सकते हैं हमसे। धन तो बहुत देते थे, गुरु जी ने एक दिन परीक्षण कर लिया उस शिष्य का। गुरु जी ने 2 शिष्यों को कहा कि अभी ये हमारे पास बात कर रहा है, और इसके घर में जाकर के सारा धन उठा रहा हो। आज रात्रि का समय था, यहाँ सत्संग में रम गए, और सत्संग में रमने के बाद सब भक्तों ने जाकर के वहां से सामान जितना था, धन संपत्ति सोने चांदी, सब उठा के आश्रम में ला दिए। पत्नी ने देखी कि भाई ये मंदिर के पुजारी हैं, ये दोनों रात्रि में यहाँ पर क्या करने आए हैं, क्या बात है। पत्नी ने सोची कि शायद मंदिर में व्यवस्था ठीक नहीं चल रहा है, अरे हम लोग कैसे गृहस्थ हैं। पत्नी ने और सोने का नकल कर लिया, पति देव सत्संग में हैं और पत्नी सोने का नकल कर लिया कि मैं सो रही हूं। अब एक करवट से सो रही थी, सब धन ले लिया था, पत्नी के एक कान में जो झुमका था सोने वाली उसको भी खोल दिया, पत्नी नींद में सो रही है, मस्ती से, नींद नहीं था वो जानती थी। पत्नी ने विचार किया कि भाई एक ही कान के ले गए, अब हमें क्या करेंगे। तब पत्नी ने सोते सोते दूसरी करवट बदल लिया, उन लोगों ने दूसरा भी खोल लिया और लेकर के जाने लगे। चले गए जब आश्रम में, गुरु जी को पता लग गया तो बोले, धनुर्दास नाम था उनका, धनुर्दास को बोले कि धनुर्दास बहुत विलंब हो गया, तुम्हारी पत्नी घर में अकेले हैं, तुम जाओ घर में। जब धनुर्दास जी आप घर में जाते हैं तो पत्नी बोलती है कि आप सुनते हो, आज घर में पुजारी लोग आए थे, लगता है मंदिर में कुछ आवश्यकता है, कुछ चाहिए वहां पर। धनुर्दास ने कहा कि तुमने कुछ बोला तो नहीं? बोले कि नहीं, मैं तो सोने का बहाना कर लिया था, ले गए सब। बोले कि अच्छा हुआ ले गए। तो पीछे से दो शिष्यों को भी भेज दिया देखने की क्या घर में बातचीत हो रही है। धनुर्दास ने कहा अपने पत्नी से कि संत लोग जब आए थे, जब उठा रहे थे, जरूर तुमने कंजूसी किया है, जरूर तुम देने में विलंब किया है, सब धन उठा के दे देना चाहिए था। धनुर्दास की आवाज सुन करके शिष्य चले गए और पत्नी बोलती है कि नहीं देव, मैं तो दोनों आंख के अपने ये क्या बोलते हैं इसको झुमका भी हमने दे दिया है। धनुर्दास बहुत प्रसन्न हो गए। ये गृहस्थ आश्रम का धर्म है, जाना नहीं है कुछ साथ में, यही रह जाएगा, इसलिए खुल करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। जगन्नाथ मिश्र जी के घर में ब्राह्मण देवता आए थे, भूख भी लगी थी, उन्होंने बड़ा प्रेम से भोजन बनाया, बहुत प्रेम से प्रसाद बनाया, और बनाने के बाद में भगवान नारायण को याद किया, स्मरण किया। जब स्मरण किया तो पर्दा लगा हुआ था ना, जहाँ भोग लग रहा था वहाँ पर्दा लगा हुआ था। महाप्रभु जैसे स्मरण किया वैसे ही महाप्रभु जाकर के पर्दा के पीछे में उसको पाने लगे। जब पर्दा खोला तो देखा कि वहां तो छोटा सा बालक ये प्रसाद जुटा कर दिया, एक ऐसा एक इतबार अनर्थ हो गया। बड़ा महात्मा बड़े ही क्रोध में आ गए जगन्नाथ मिश्र और सची माता ने प्रार्थना किया, चरणों को दबाया, निवेदन किया, अच्छा फिर से अभी इसको मैं सावधानी से रखूंगा। दूसरे बार बनाया, भगवान को स्मरण किया, दूसरे बार भी भगवान ने जाके खा लिया। संत ने कहा कि अब मुझे आने करना है, तुम्हारा छोटा सा नटखट बालक कितना नटखट है, कितना इसको तुम सर्प चढ़ा रखे हो, मेरा जूठा का ये मेरा भोग खा जाता है प्रभु का। जगन्नाथ मिश्र जी ने बड़ा निवेदन किया, कहा कि इस बार मैं बहुत सावधान रहूंगा, मैं इसको अंदर बंद कर देता हूँ। महाप्रभु को उन लोगों ने अंदर बंद कर दिया। भोग तैयार हुआ, भोग लगा, भगवान को स्मरण किया, चिंतन किया, भगवान ने उस जो रूम में बंद थे उसमें से बाहर निकल करके भोग को खा लिया। चौथी बार जब आए संत चिल्लाने लगे तो प्रभु ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप बार बार मुझे बुलाते हो और जब मैं आता हूँ खाता हूँ तो आप विरोध करते हो। महाप्रभु ने उन पर अपनी अटूट कृपा बरसाई, अटूट कृपा दिया, दर्शन दिया महाप्रभु ने। महाप्रभु एक बार सो रहे थे घर में, तो महाप्रभु उल्टा सो रहे थे, तो ये माता पिता को बताना चाहते हैं कि तुम्हारे घर में मैं गुप्त रूप से आए हैं ना प्रभु, तो बताना चाहते हैं महाप्रभु के उनके जो पांव था उसमें शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह था, उसमें शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह था। तो उन लोगों ने सबने देखा, आचार्य लोगों ने भगवान का भक्त का गुण मिलाया और वहां के जितने बड़े बड़े आचार्य थे, जितने बड़े बड़े विद्वान थे, जितने बड़े बड़े सूरी लोग थे, उस सब ने महाप्रभु के लक्षण गुण और संसार के चीज मिला करके ये घोषणा कर दिया कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र के जो घर में पदार्पण हुआ है, जो अवतार हुआ है, सची माता के पुत्र के रूप में आए हैं, वो कोई और अन्य कोई नहीं, वो स्वयं भगवान है, ने घोषणा किया ऐसे। तो महाप्रभु की लीला तो बहुत है, और भी वक्ता लोग हैं ना, सबको समय से टाइम मिलना चाहिए। सभी देखो, हमने अपनी वाणी को पवित्र किया, आप लोग तो सब जानते हैं बात को, लेकिन मैंने थोड़ा सा हमारी अधिकारियों का आज्ञा था तो मैं अपने वाणी पवित्र किया, और यदि कोई भूल हो गई हो तो अपना समझ के क्षमा कर देना आप लोग। धन्यवाद। हरे कृष्ण।